नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सशस्त्र बलों को बधाई दी। कहा, पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है और इसे IAEA को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नादिर गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। सेना ने मणिपुर में चंदेल जिले में 10 उग्रवादियों को मार गिराया। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने क्षेत्र में दशकों से जारी हिंसा और जबरन लोगों को गायब करने का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की और आज शाम पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन होगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से निर्यात किए जा रहे आतंकवादियों के खिलाफ भारत की अभेद्य और मजबूत प्रतिक्रिया है। सेना की 15वीं कोर बादामी बाग छावनी में जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा है कि देश को सशस्त्र बलों पर उनके साहस, प्रतिबद्धता और मातृभूमि की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प पर गर्व है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत को धमकाया है। पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद ये उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ सेना अधिकारी भी उपस्थित रहे।
हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है।
जम्मू कश्मीर में आज पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के नादिर त्रार इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन आज सुबह शुरू हुआ था। IGP कश्मीर VK बिद्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि ऑपरेशन के दौरान तीन हथियारबंद आतंकवादी मारे गए और उनके शव मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है। इससे पहले नादिर त्राल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के संयुक्त बलों द्वारा सुबह सुबह घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लंबी गोलीबारी के दौरान हथियारबंद आतंकवादियों को मार गिराया गया। भारतीय सेना ने मणिपुर के चंदेल जिले के अंतर्गत खुंजो उपमंडल में न्यू समतल में संदिग्ध पहाड़ी आधारित उग्रवादी समूह के 10 कैडेट्स को मार गिराया है। सेना की पूर्वी कमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह विशिष्ट खुफिया रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए यूनिट ने क्षेत्र में एक ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध कैडेट्स ने सेना पर गोलीबारी की और बाद में जवाबी गोलीबारी के दौरान उनमें से 10 मारे गए। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए उग्रवादियों की पहचान से पता चलता है कि वे मणिपुर के पहाड़ी जिलों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सक्रिय एक उग्रवादी समूह से संबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए जयपुर में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई बड़ी चौपड़ तक की यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। पंजाब के जालंधर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना का साहस, पराक्रम और रणनीतिक प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इधर भारतीय सशस्त्र बलों और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में आज अरुणाचल प्रदेश के लिकावाली में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रेरी लिकावाली में SBI के पास शुरू हुई है। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कार्दोनी ग्योर और नारिकोयू विधायक तोजिर कादू सहित कई गणमान्य व्यक्तियों और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया। देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव से परिपूर्ण इस रैली में लोगों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा का स्मरण किया जा रहा है, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री आहार के निर्यात पर विचार विमर्श किया गया। तमिलनाडु विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायालय से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान में निर्धारित समय सीमा की व्यवस्था न होने पर भी क्या विधेयकों की मंजूरी के लिए राज्यपालों पर कोई समय सीमा तय की जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति को विधि और लोक महत्व के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह 20 मई को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को सुनिश्चित देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत पर विचार करेगा। प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 19 मई तक अपने लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि मामले की सुनवाई 20 मई को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ने आज संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। डॉ कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी है। उन्होंने पूर्व में अगस्त 2019 में अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के पद का भार भी संभाला था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक चलती बस में भीषण आग लगने से 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। लखनऊ दक्षिण के पुलिस आयुक्त निपुण अग्रवाल ने बताया है कि बस में लगभग 70 लोग सवार थे। शुरुआती जांच से पता चलता है कि बस का आपातकालीन दरवाजा न खुलने से पिछली सीटों पर बैठे यात्री आग की चपेट में आ गए और समय से बाहर नहीं निकल पाए। आग लगने की सही कारणों का अभी पता नहीं चला है और जांच जारी है। बलूचिस्तान में राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस क्षेत्र में दशकों से चली आ रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला दिया। सोशल मीडिया में स्वतंत्र बलूचिस्तान के प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज और मानचित्र की तस्वीरें लगातार आ रही है। प्रमुख बलूच नेता और लेखक मीर यार बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान ने लोगों की आजादी की मांग करते हुए बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है की घोषणा करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों में बिजली के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान और बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, लोअर सुबनसिरी, कामले, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिवांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पापुमपारे और लोअर दिवांग वैली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज शाम संपन्न होने जा रहा है। बिहार के पटना में कंकड़बाड़ स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 6:30 रंगारंग समारोह के साथ यूथ गेम्स का समापन होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का चैंपियन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र ने अंतिम समाचार मिलने तक 57 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान बनाए हुए रखे हुए हैं। वहीं हरियाणा 39 स्वर्ण, 27 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान और राजस्थान 23 स्वर्ण, 12 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।